Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, November 2022 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास 1, प्रश्न 1 से 6. प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
छात्रों, ध्यान से सुने. संग्रहालय के द्वार खुलने वाले हैं. सुरक्षा जांच पार करने के बाद सबसे पहले अपनी पीने के पानी की बोतलें भर लें. संग्रहालय की सैर करने के लिए आपके पास कुल 8 घंटे का समय है. सैर के बाद आपको संग्रहालय में प्रदर्शित किसी वस्तु या प्रदर्शनी पर एक लेख लिखना है. इसलिए नोट करते रहें. अपना सामान संभाल कर रखें और संग्रहालय में प्रदर्शित चीजों को छू कर देखने की कोशिश न करें. धन्यवाद. छात्रों, ध्यान से सुने. संग्रहालय के द्वार खुलने वाले हैं. सुरक्षा जांच पार करने के बाद सबसे पहले अपनी पीने के पानी की बोतलें भर लें. संग्रहालय की सैर करने के लिए आपके पास कुल 8 घंटे का समय है. सैर के बाद आपको संग्रहालय में प्रदर्शित किसी वस्तु या प्रदर्शनी पर एक लेख लिखना है. इसलिए नोट करते रहें. अपना सामान संभाल कर रखें और संग्रहालय में प्रदर्शित चीजों को छू कर देखने की कोशिश न करें. धन्यवाद.
संवाद दो.
आइए जनाब, एकदम नई किस्म के जूते आए हैं.
नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए.
कोई बात नहीं, कहाँ है बिटिया?
वह तो नहीं आई, लेकिन मेरे पास उसका नाप है.
ठीक है, इधर आ जाइए और पसंद कर लीजिए.
ऐसे दिखाइए जिनमें चलते समय रोशनी हो और संगीत बजे.
ऐसा दिखा दूं जिसमें बच्ची के दूर जाते ही अलार्म बजता हो?
अरे वाह, जरा दिखाइए.
आइए जनाब, एकदम नई किस्म के जूते आए हैं.
नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए.
कोई बात नहीं, कहाँ है बिटिया?
वह तो नहीं आई, लेकिन मेरे पास उसका नाप है.
ठीक है, इधर आ जाइए और पसंद कर लीजिए.
ऐसे दिखाइए जिनमें चलते समय रोशनी हो और संगीत बजे.
ऐसा दिखा दूं जिसमें बच्ची के दूर जाते ही अलार्म बजता हो?
अरे वाह, जरा दिखाइए. संवाद तीन.
हेलो राजी, मैं तनु बोल रही हूँ. हम लोग आज कुटीर उद्योगों की जानकारी जुटाने चांपा नाम के एक गांव में गए हैं. वापस लौटते लौटते शाम हो जाएगी, इसलिए स्कूल आना नहीं हो पाएगा. मुझे तुमसे एक मदद चाहिए. अगले हफ्ते की समय सारणी बोर्ड पर लग गई होगी. प्लीज उसका एक फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो. मुझे ये भी जानना है कि अपने सालाना अधिवेशन की बैठक में क्या तय हुआ है. हम लोग इस बार किसको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाने वाले हैं. तुम फुर्सत मिलते ही मुझे फोन करना. बाय. हेलो राजी, मैं तनु बोल रही हूँ। हम लोग आज कुटीर उद्योगों की जानकारी जुटाने चंपा नाम के एक गांव में गए हैं। वापस लौटते लौटते शाम हो जाएगी, इसलिए स्कूल आना नहीं हो पाएगा। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अगले हफ्ते की समय सारणी बोर्ड पर लग गई होगी, प्लीज उसका एक फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो। मुझे ये भी जानना है कि अपने सालाना अधिवेशन की बैठक में क्या तय हुआ है। हम लोग इस बार किसको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाने वाले हैं। तुम फुर्सत मिलते ही मुझे फोन करना। बाय। संवाद चार।
बेटी, आप बैठ जाइए, आपके पास सामान है।
नहीं दादाजी, ये तो आपकी ही सीट है, शुक्रिया।
नहीं, मुझे तो बस 3-4 स्टॉप के बाद उतर जाना है।
तो ठीक है, तब तक तो आराम से बैठे रहिए।
चलो, तुम्हारी मर्जी, चाहो तो अपना सामान रख दो।
लेकिन आपको तकलीफ तो नहीं होगी, भारी है।
बिल्कुल नहीं, अभ्यास हो गया है बच्चों को बिठाकर।
शुक्रिया।
बेटी, आप बैठ जाइए, आपके पास सामान है।
नहीं दादाजी, ये तो आपकी ही सीट है, शुक्रिया।
नहीं, मुझे तो बस 3-4 स्टॉप के बाद उतर जाना है।
तो ठीक है, तब तक तो आराम से बैठे रहिए।
चलो, तुम्हारी मर्जी, चाहो तो अपना सामान रख दो।
लेकिन आपको तकलीफ तो नहीं होगी, भारी है।
बिल्कुल नहीं, अभ्यास हो गया है बच्चों को बिठाकर।
शुक्रिया।
संवाद पांच।
भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। गोस्वामी सन 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेलते थे। बहुमुखी खेल प्रतिभा के धनी गोस्वामी भारत के लिए ओलंपिक खेलों समेत 50 फुटबॉल मैचों में खेले थे। साथ ही उन्होंने प्रथम श्रेणी के 46 क्रिकेट मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व भी किया था। भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। गोस्वामी सन 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेलते थे। बहुमुखी खेल प्रतिभा के धनी गोस्वामी भारत के लिए ओलंपिक खेलों समेत 50 फुटबॉल मैचों में खेले थे। साथ ही उन्होंने प्रथम श्रेणी के 46 क्रिकेट मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व भी किया था।
संवाद छः।
बख्शी साहब, मोहल्ले की सफाई का कुछ करना होगा।
क्यों, क्या हुआ? सफाई वाले आते तो हैं।
नहीं, बात उनकी नहीं है, कुत्ते पालने वालों ने नाक में दम कर रखा है।
हाँ, ये तो है, लोगों को पालने का शौक तो लग गया है, लेकिन उनका मैला साफ नहीं करते।
भला कोई बात है, कितना देख देख कर चलना पड़ता है।
चलिए ठीक है, इस बार की बैठक में बात उठाते हैं।
पक्का? मैं कुछ और लोगों से भी कहती हूं। बख्शी साहब, मोहल्ले की सफाई का कुछ करना होगा।
क्यों, क्या हुआ? सफाई वाले आते तो हैं।
नहीं, बात उनकी नहीं है। कुत्ते पालने वालों ने नाक में दम कर रखा है।
हाँ, ये तो है। लोगों को पालने का शौक तो लग गया है, लेकिन उनका मैला साफ नहीं करते।
भला कोई बात है? कितना देख देख कर चलना पड़ता है।
चलिए ठीक है, इस बार की बैठक में बात उठाते हैं।
पक्का? मैं कुछ और लोगों से भी कहती हूँ।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात।
गांधी जी के कलाबोध का परिचय देने वाली इस वार्ता को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह वार्ता आपको दो बार सुनाई जाएगी।
कहा जाता है कि महात्मा गांधी को कला विशेष रूप से आकर्षित नहीं करती थी, पर वे प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा किया करते थे। उनके लिए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल निरीह मजदूरों से जबरन करवाया गया काम ही था। पेरिस के प्रसिद्ध आइफल टावर को वे बच्चों का खिलौना मानते थे। उन्होंने अपनी तरह से जीने की कला आविष्कृत की थी, जिसने उनके पूरे जीवन को कलात्मक बना दिया। अक्टूबर 1924 में उन्होंने कहा था, मुझे तो सुंदरता सत्य में दिखाई देती है। जिस कला से हम सत्य के भीतर छिपी सुंदरता देख सकें, वही सच्ची कला होगी। मेरे जीवन में सच्ची कला काफी मात्रा में है। भले ही आप जिसे कलाकृति कहते हैं उसे वैसा ना पाएं। जो सुंदर दृश्य मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि रात के आसमान में मैं चमकते सितारे देखता हूं, क्या मानव निर्मित कला वैसा दे सकती है? लेकिन इसका ये अभिप्राय निकालना भी गलत होगा कि गांधी जी में सौंदर्य बोध की कमी थी। यदि ऐसा होता तो वे सन 1937 के कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन के पंडाल की सजावट के लिए शांति निकेतन से प्रसिद्ध कलाकार आचार्य नंदलाल बसु को क्यों बुलाते? पर हां, आधुनिक कला, खासकर अमूर्त कला के बारे में उनका कहना था, इसकी क्यों जरूरत हो कि चित्रकार खुद अपनी पेंटिंग मुझे समझाए? पेंटिंग ही स्वयं अपनी बात मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा सके? महात्मा गांधी की कला के विषय में कुछ भी राय रही हो, पर कलाकारों को उन्होंने सदा प्रेरित और प्रभावित किया। लोक कला से लेकर डाक टिकटों, सिक्कों, नोटों तक पर उनकी तस्वीरें छापी गईं। भारत ही नहीं बल्कि कजाकिस्तान, मोरक्को, लाइबेरिया, गयाना, कैमरून और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के टिकटों पर भी गांधी जी के चित्र छापे गए। दुनिया में शायद ही दूसरा कोई ऐसा नेता हो जिसको दुनिया के इतने सारे देशों में इतने सारे कलाकारों ने इतनी सारी विधाओं में ढाला हो। भारत में तो उनके जीवन से जुड़े प्रायः प्रत्येक स्थल पर गांधी स्मृति संग्रहालय स्थापित हो चुके हैं, जिनमें पर्यटकों के लिए तरह तरह के स्मृति चिन्ह बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। चरखे, उनके तीन बंदर, मूर्तियां, दांडी यात्रा, नोआखाली में पालकी पर बैठे गांधी जी, ये सब चित्रों, मूर्तियों यहाँ तक कि कठपुतलियों के रूप में भी मिल जाएंगे। लोक कला की विभिन्न विधाओं में भी गांधी जी मौजूद हैं, जैसे मधुबनी, वार्ली, रंगोली, चमड़े का काम, तंजौर के कांच के चित्र आदि।
अभ्यास दो की यह वार्ता अब आप फिर से सुनेंगे।
कहा जाता है कि महात्मा गांधी को कला विशेष रूप से आकर्षित नहीं करती थी, पर वे प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा किया करते थे। उनके लिए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल निरीह मजदूरों से जबरन करवाया गया काम ही था। पेरिस के प्रसिद्ध आइफल टावर को वे बच्चों का खिलौना मानते थे। उन्होंने अपनी तरह से जीने की कला आविष्कृत की थी, जिसने उनके पूरे जीवन को कलात्मक बना दिया। अक्टूबर 1924 में उन्होंने कहा था, मुझे तो सुंदरता सत्य में दिखाई देती है। जिस कला से हम सत्य के भीतर छिपी सुंदरता देख सकें, वही सच्ची कला होगी। मेरे जीवन में सच्ची कला काफी मात्रा में है। भले ही आप जिसे कलाकृति कहते हैं उसे वैसा ना पाएं। जो सुंदर दृश्य मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि रात के आसमान में मैं चमकते सितारे देखता हूं, क्या मानव निर्मित कला वैसा दे सकती है? लेकिन इसका ये अभिप्राय निकालना भी गलत होगा कि गांधी जी में सौंदर्य बोध की कमी थी। यदि ऐसा होता तो वे सन 1937 के कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन के पंडाल की सजावट के लिए शांति निकेतन से प्रसिद्ध कलाकार आचार्य नंदलाल बसु को क्यों बुलाते? पर हां, आधुनिक कला, खासकर अमूर्त कला के बारे में उनका कहना था, इसकी क्यों जरूरत हो कि चित्रकार खुद अपनी पेंटिंग मुझे समझाए? पेंटिंग ही स्वयं अपनी बात मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा सके? महात्मा गांधी की कला के विषय में कुछ भी राय रही हो, पर कलाकारों को उन्होंने सदा प्रेरित और प्रभावित किया। लोक कला से लेकर डाक टिकटों, सिक्कों, नोटों तक पर उनकी तस्वीरें छापी गईं। भारत ही नहीं बल्कि कजाकिस्तान, मोरक्को, लाइबेरिया, गयाना, कैमरून और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के टिकटों पर भी गांधी जी के चित्र छापे गए। दुनिया में शायद ही दूसरा कोई ऐसा नेता हो जिसको दुनिया के इतने सारे देशों में इतने सारे कलाकारों ने इतनी सारी विधाओं में ढाला हो। भारत में तो उनके जीवन से जुड़े प्रायः प्रत्येक स्थल पर गांधी स्मृति संग्रहालय स्थापित हो चुके हैं, जिनमें पर्यटकों के लिए तरह तरह के स्मृति चिन्ह बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। चरखे, उनके तीन बंदर, मूर्तियां, दांडी यात्रा, नोआखाली में पालकी पर बैठे गांधी जी, ये सब चित्रों, मूर्तियों, यहां तक कि कठपुतलियों के रूप में भी मिल जाएंगे। लोक कला की विभिन्न विधाओं में भी गांधी जी मौजूद हैं, जैसे मधुबनी, वार्ली, रंगोली, चमड़े का काम, तंजौर के कांच के चित्र आदि।
अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3 प्रश्न 8 से 15।
जापान में पढ़ाने वाले भारतीय प्राध्यापक सुगत मित्र के साथ पत्रकार विभा माथुर की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
प्रोफेसर सुगत मित्र, आप एक अरसे से जापान में पढ़ा रहे हैं और एक गांव में रहते हैं। वहां के देहात की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे तकनीक में ही नहीं प्रकृति के रखरखाव में भी जापान दुनिया से कहीं आगे है। क्या मेरा अनुमान सही है?
है भी और नहीं भी। सही इस मायने में कि जापानी लोग पर्यावरण के साथ साथ अपनी साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं। गलियों को साफ सुथरा रखते हैं, घरों में जूते उतार कर जाते हैं। उन्होंने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की कला में महारत हासिल कर रखी है, यानी ऐसी चीजों का प्रयोग कम करना जिनसे कचरा फैले, चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना और कचरे को रिसाइकल करना। इन तीनों में एक कला और जुड़ जाती है जो जापानियों में पुराने जमाने से रही है, वह है रिस्पेक्ट या चीजों का आदर करने या उनसे लगाव रखने की कला, जिसे वे मोताई नाई कहते हैं।
चलिए, ये तो मेरा अनुमान सही होने की बातें हुई। और वे कौन सी बातें हैं जो उसे गलत ठहराती हैं?
आपको सुनकर शायद अचरज होगा, लेकिन प्लास्टिक का कचरा पैदा करने में जापान दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पूरा यूरोपीय संघ इतना प्लास्टिक का कचरा पैदा नहीं करता जितना अकेला जापान कर देता है, जबकि यूरोपीय संघ की आबादी जापान से 4 गुना है। आप तो जानते ही हैं कि महासागरों और नदी जलाशयों में बढ़ते प्लास्टिक के प्रदूषण को लेकर आजकल कितनी चिंता फैली हुई है।
और वह चिंता सही भी है, क्योंकि ये प्लास्टिक जल जीवों और पेड़ पौधों में जाकर जीन परिवर्तन कर रहा है, जिसके प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। लेकिन आप ही बताइए कि जापान में ऐसा विरोधाभास क्यों है? एक तरफ सफाई और कचरे को लेकर इतनी जागरूकता और दूसरी तरफ प्लास्टिक का इतना कचरा?
मुझे लगता है इसका कारण जापान के औद्योगिक विकास की दिशा में छिपा है। जापान ने शुरू से ही छोटी, हल्की और टिकाऊ चीजें बनाकर दुनिया में अपनी धाक जमाई, जिनमें प्लास्टिक का खूब प्रयोग होता है। धातुएं महंगी और भारी थीं और कागज का प्रयोग वे किफायत से करते हैं, क्योंकि वो पेड़ों से बनता है, इसलिए प्लास्टिक ही बचा जिसका प्रयोग बढ़ता गया।
तो अब प्लास्टिक का कचरा कम करने के लिए क्या किया जा रहा है?
प्लास्टिक के कचरे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पुरानी मोताई नाई परंपरा का सहारा लिया जा रहा है, जो लोगों को पुरानी चीजों को सहेज कर रखने, जहां तक हो सके उनका दोबारा इस्तेमाल करने और रिसाइकल करने के लिए प्रेरित करती है। पुरानी पीढ़ी के लोग तो मोताई नाई को समझते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के युवाओं को जानकारी नहीं है। केनिया की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई कुछ साल पहले जापान आई थी। पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें मोताई नाई की परंपरा इतनी भाई कि उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का अभियान चला दिया।
ये अभियान प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए क्या करता है?
ये नई पीढ़ी को इस्तेमाल किया और फेंका की संस्कृति से दूर हटाकर चीजों के प्रति लगाव की भावना को जगाता है। चाय समारोहों का आयोजन करता है, जहां करीने से मरम्मत किए हुए चाय के पुराने प्यालों की नुमाइश की जाती है। पुरानी चीजों को अलविदा कहने के समारोह होते हैं, जहां टूटी हुई सिलाई की सुइयों को टोफू के पकोड़ों में लगाकर विदा किया जाता है। बच्चों को पुरानी चीजों की तरफ लुभाने के लिए मोताई नाई बाजार लगते हैं, जहां बच्चे अपनी पुरानी चीजों के बदले दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। इससे बच्चे चीजों को फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा काम में लाना सीखते हैं। एक पूरे शहर को ही मोताई नाई शहर बना दिया गया है, जहां अब कोई कचरा नहीं फेंका जाता।
प्रोफेसर सुगत मित्र, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
प्रोफेसर सुगत मित्र, आप एक अरसे से जापान में पढ़ा रहे हैं और एक गांव में रहते हैं। वहां के देहात की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे तकनीक में ही नहीं, प्रकृति के रखरखाव में भी जापान दुनिया से कहीं आगे है। क्या मेरा अनुमान सही है?
है भी और नहीं भी। सही इस मायने में कि जापानी लोग पर्यावरण के साथ साथ अपनी साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं। गलियों को साफ सुथरा रखते हैं, घरों में जूते उतार कर जाते हैं। उन्होंने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की कला में महारत हासिल कर रखी है, यानी ऐसी चीजों का प्रयोग कम करना जिनसे कचरा फैले, चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना और कचरे को रिसाइकल करना। इन तीनों में एक कला और जुड़ जाती है जो जापानियों में पुराने जमाने से रही है, वह है रिस्पेक्ट या चीजों का आदर करने या उनसे लगाव रखने की कला, जिसे वे मोताई नाई कहते हैं।
चलिए, ये तो मेरा अनुमान सही होने की बातें हुई। और वे कौन सी बातें हैं जो उसे गलत ठहराती हैं?
आपको सुनकर शायद अचरज होगा, लेकिन प्लास्टिक का कचरा पैदा करने में जापान दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पूरा यूरोपीय संघ इतना प्लास्टिक का कचरा पैदा नहीं करता जितना अकेला जापान कर देता है, जबकि यूरोपीय संघ की आबादी जापान से 4 गुना है। आप तो जानते ही हैं कि महासागरों और नदी जलाशयों में बढ़ते प्लास्टिक के प्रदूषण को लेकर आजकल कितनी चिंता फैली हुई है।
और वह चिंता सही भी है, क्योंकि ये प्लास्टिक जल जीवों और पेड़ पौधों में जाकर जीन परिवर्तन कर रहा है, जिसके प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। लेकिन आप ही बताइए कि जापान में ऐसा विरोधाभास क्यों है? एक तरफ सफाई और कचरे को लेकर इतनी जागरूकता और दूसरी तरफ प्लास्टिक का इतना कचरा?
मुझे लगता है इसका कारण जापान के औद्योगिक विकास की दिशा में छिपा है। जापान ने शुरू से ही छोटी, हल्की और टिकाऊ चीजें बनाकर दुनिया में अपनी धाक जमाई, जिनमें प्लास्टिक का खूब प्रयोग होता है। धातुएं महंगी और भारी थीं और कागज का प्रयोग वे किफायत से करते हैं, क्योंकि वो पेड़ों से बनता है, इसलिए प्लास्टिक ही बचा जिसका प्रयोग बढ़ता गया।
तो अब प्लास्टिक का कचरा कम करने के लिए क्या किया जा रहा है?
प्लास्टिक के कचरे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पुरानी मोताई नाई परंपरा का सहारा लिया जा रहा है, जो लोगों को पुरानी चीजों को सहेज कर रखने, जहां तक हो सके उनका दोबारा इस्तेमाल करने और रिसाइकल करने के लिए प्रेरित करती है। पुरानी पीढ़ी के लोग तो मोताई नाई को समझते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के युवाओं को जानकारी नहीं है। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई कुछ साल पहले जापान आई थी। पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें मोताई नाई की परंपरा इतनी भाई कि उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का अभियान चला दिया।
ये अभियान प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए क्या करता है?
ये नई पीढ़ी को इस्तेमाल किया और फेंका की संस्कृति से दूर हटाकर चीजों के प्रति लगाव की भावना को जगाता है। चाय समारोहों का आयोजन करता है जहां करीने से मरम्मत किए हुए चाय के पुराने प्यालों की नुमाइश की जाती है। पुरानी चीजों को अलविदा कहने के समारोह होते हैं जहां टूटी हुई सिलाई की सुइयों को टोफू के पकौड़ों में लगाकर विदा किया जाता है। बच्चों को पुरानी चीजों की तरफ लुभाने के लिए मोताई नाई बाजार लगते हैं जहां बच्चे अपनी पुरानी चीजों के बदले दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। इससे बच्चे चीजों को फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा काम में लाना सीखते हैं। एक पूरे शहर को ही मोताई नाई शहर बना दिया गया है जहां अब कोई कचरा नहीं फेंका जाता।
प्रोफेसर सुगत मित्र, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4, प्रश्न 16-23।
स्कूलों की पढ़ाई और बच्चों की रचनाशीलता पर दो शिक्षा शास्त्रियों की बहस को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। यह बहस आपको दो बार सुनाई जाएगी।
जो बच्चे इस साल से पढ़ाई शुरू करेंगे वे 2090 में जाकर सेवानिवृत्त होंगे। कोई नहीं बता सकता कि उन दिनों की दुनिया कैसी होगी। यानी स्कूलों का काम बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार करना है जिसका स्वरूप कैसा होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन हमने शिक्षा प्रणाली ऐसी बना रखी है जो समस्याओं के नए नए हल खोज निकालने की बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को दबाकर उन्हें आज्ञाकारी मशीनों में बदलने का काम करती है। सारा जोर कुछ नया और अनूठा कर दिखाने की बजाय सूचनाएं भरने पर रहता है। रचनाशीलता को साक्षरता की बलि चढ़ाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहा करते थे, गलती करना सीखने की पहली सीढ़ी है, भूल आपका सबसे बड़ा गुरु है। भूल से अनुभव होता है और अनुभव होने पर आप कम भूल करते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को भूल से सीखना नहीं बल्कि भूल से बचना सिखाती है। पढ़ने लिखने से लेकर बोलने बनाने तक हर काम में भूल ना करने पर जोर रहता है। हम बच्चों को अपनी रचनात्मक प्रकृति दबाना सिखाते हैं। परीक्षाएं हों, प्रतियोगिताएं हों या नौकरी के लिए साक्षात्कार, योग्यता का आकलन भी उसी आधार पर होता है कि एक नियत समय और अवसर पर कौन कम गलतियां करता है।
ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत सुधारों के साथ शिक्षा की यही प्रणाली गुरुकुलों के जमाने से चली आ रही है। बच्चे स्कूल में कोरे कागज की तरह आते हैं। स्कूल उन्हें सिखा पढ़ाकर शिक्षित, अनुशासित और विचारशील इंसान बनाकर भेजते हैं जो समाज में सकारात्मक और सार्थक भूमिका निभा सके। स्कूलों में बच्चों की रचनाशीलता को दबाया नहीं जाता, वरन उसे सही दिशा दी जाती है ताकि उससे बच्चा और उसका समाज दोनों लाभान्वित हो सके। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने और अपनी सहज प्रतिभा और कमजोरियों को समझने में कठिनाई होती है। अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था के बिना कोरी रचनाशीलता व्यक्ति को दिशाहीनता की तरफ भी धकेल सकती है। यदि रचनाशीलता पर कम और सूचनाओं के संग्रह पर ज्यादा जोर दिया जाता है तो इसमें कमी हमारी शिक्षा प्रणाली की नहीं बल्कि अध्यापकों और सरकारों की है जो उसमें रचनाशीलता और सामान्य ज्ञान का सही संतुलन नहीं रख रहे।
बात केवल अध्यापकों और सरकारों की नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के पाठ्यक्रम को उठाकर देख लीजिए। गणित, इंजीनियरिंग, विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषय पाठ्य विषयों की कतार में सबसे ऊपर रहते हैं और नृत्य, संगीत और कला जैसे विषय सबसे नीचे। कलाओं में भी रंगमंच और नृत्य का स्थान चित्रकला और संगीत के बाद रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा का जोर बच्चों के पूरे व्यक्तित्व की बजाय उनके दिमागों पर ज्यादा रहता है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सारी ऊर्जा गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और संगीत में विशारद सिर तैयार करने में जाती है, नाचने और भागने वाले पैर तैयार करने पर नहीं। ब्रिटेन की एक चोटी की नृत्य निर्देशक को बचपन में एक मनोरोग चिकित्सक के पास ले जाया गया, जिसने लंबी बातचीत के बाद माँ बाप को समझाया कि उनकी बेटी बीमार नहीं है बल्कि उसमें नाचने की सहज प्रतिभा है, इसलिए वो कक्षा में निचली नहीं बैठ सकती। दुनिया के ज्यादातर आविष्कारक, कलाकार और मौलिक विचारक स्कूली शिक्षा में कमजोर रहे हैं, लेकिन अपनी रचनाशीलता के बल पर उन्होंने दुनिया बदल दी। यदि हमें बच्चों को कल की चुनौती के लिए तैयार करना है तो उनकी रचनाशीलता को इस शिक्षा प्रणाली से आजादी दिलानी होगी।
यह सही है कि शैक्षिक उपाधियों की कोई उपयोगिता और कीमत नहीं बची है। फिर भी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और प्रबंधकों के बिना काम नहीं चल सकता। स्कूली शिक्षा प्रणाली ने भी बहुत से आविष्कारक, दार्शनिक और कलाकार दिए हैं, लेकिन हाँ, सूचना को जमा कराने की बजाय रचनाशीलता पर जोर देने का समय आ गया है, क्योंकि सूचना जमा करने और उसका गहन विश्लेषण करने का काम तो हमने मशीनों को भी सिखा दिया है। इसलिए अब स्कूलों में बच्चों पर पाठ्यक्रम लादने की बजाय उन्हें उनकी रुचि के कामों में लगाने की जरूरत है। गलतियों की परवाह किए बिना नए नए प्रयोग करने और मिल बैठकर ज्ञान साझा करने से ही नई युक्तियां सूझती हैं। हमारे दिमाग की ताकत उसकी अरबों कोशिकाओं में नहीं, एक दूसरी के साथ जुड़ने से बने जाल में रहती है। तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद करने की नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में रचनाशीलता पर जोर देने की जरूरत है। अभ्यास चार की इस बहस को अब आप फिर से सुनेंगे।
जो बच्चे इस साल से पढ़ाई शुरू करेंगे वे 2090 में जाकर सेवानिवृत्त होंगे। कोई नहीं बता सकता कि उन दिनों की दुनिया कैसी होगी। यानी स्कूलों का काम बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार करना है जिसका स्वरूप कैसा होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन हमने शिक्षा प्रणाली ऐसी बना रखी है जो समस्याओं के नए नए हल खोज निकालने की बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को दबाकर उन्हें आज्ञाकारी मशीनों में बदलने का काम करती है। सारा जोर कुछ नया और अनूठा कर दिखाने की बजाय सूचनाएं भरने पर रहता है। रचनाशीलता को साक्षरता की बलि चढ़ाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहा करते थे, गलती करना सीखने की पहली सीढ़ी है, भूल आपका सबसे बड़ा गुरु है। भूल से अनुभव होता है और अनुभव होने पर आप कम भूल करते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को भूल से सीखना नहीं बल्कि भूल से बचना सिखाती है। पढ़ने लिखने से लेकर बोलने बनाने तक हर काम में भूल ना करने पर जोर रहता है। हम बच्चों को अपनी रचनात्मक प्रकृति दबाना सिखाते हैं। परीक्षाएं हों, प्रतियोगिताएं हों या नौकरी के लिए साक्षात्कार, योग्यता का आकलन भी उसी आधार पर होता है कि एक नियत समय और अवसर पर कौन कम गलतियां करता है।
ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत सुधारों के साथ शिक्षा की यही प्रणाली गुरुकुलों के जमाने से चली आ रही है। बच्चे स्कूल में कोरे कागज की तरह आते हैं। स्कूल उन्हें सिखा पढ़ाकर शिक्षित, अनुशासित और विचारशील इंसान बनाकर भेजते हैं, जो समाज में सकारात्मक और सार्थक भूमिका निभा सके। स्कूलों में बच्चों की रचनाशीलता को दबाया नहीं जाता, वरन उसे सही दिशा दी जाती है, ताकि उससे बच्चा और उसका समाज दोनों लाभान्वित हो सके। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने और अपनी सहज प्रतिभा और कमजोरियों को समझने में कठिनाई होती है। अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था के बिना कोरी रचनाशीलता व्यक्ति को दिशाहीनता की तरफ भी धकेल सकती है। यदि रचनाशीलता पर कम और सूचनाओं के संग्रह पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो इसमें कमी हमारी शिक्षा प्रणाली की नहीं बल्कि अध्यापकों और सरकारों की है, जो उसमें रचनाशीलता और सामान्य ज्ञान का सही संतुलन नहीं रख रहे।
बात केवल अध्यापकों और सरकारों की नहीं है, दुनिया के किसी भी देश के पाठ्यक्रम को उठाकर देख लीजिए। गणित, इंजीनियरिंग, विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषय पाठ्य विषयों की कतार में सबसे ऊपर रहते हैं और नृत्य, संगीत और कला जैसे विषय सबसे नीचे। कलाओं में भी रंगमंच और नृत्य का स्थान चित्रकला और संगीत के बाद रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा का जोर बच्चों के पूरे व्यक्तित्व की बजाय उनके दिमागों पर ज्यादा रहता है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सारी ऊर्जा गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और संगीत में विशारद सिर तैयार करने में जाती है, नाचने और भागने वाले पैर तैयार करने पर नहीं। ब्रिटेन की एक चोटी की नृत्य निर्देशक को बचपन में एक मनोरोग चिकित्सक के पास ले जाया गया, जिसने लंबी बातचीत के बाद माँ बाप को समझाया कि उनकी बेटी बीमार नहीं है बल्कि उसमें नाचने की सहज प्रतिभा है, इसलिए वो कक्षा में निचली नहीं बैठ सकती। दुनिया के ज्यादातर आविष्कारक, कलाकार और मौलिक विचारक स्कूली शिक्षा में कमजोर रहे हैं, लेकिन अपनी रचनाशीलता के बल पर उन्होंने दुनिया बदल दी। यदि हमें बच्चों को कल की चुनौती के लिए तैयार करना है, तो उनकी रचनाशीलता को इस शिक्षा प्रणाली से आजादी दिलानी होगी।
यह सही है कि शैक्षिक उपाधियों की कोई उपयोगिता और कीमत नहीं बची है, फिर भी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और प्रबंधकों के बिना काम नहीं चल सकता। स्कूली शिक्षा प्रणाली ने भी बहुत से आविष्कारक, दार्शनिक और कलाकार दिए हैं, लेकिन हाँ, सूचना को जमा कराने की बजाय रचनाशीलता पर जोर देने का समय आ गया है, क्योंकि सूचना जमा करने और उसका गहन विश्लेषण करने का काम तो हमने मशीनों को भी सिखा दिया है। इसलिए अब स्कूलों में बच्चों पर पाठ्यक्रम लादने की बजाय उन्हें उनकी रुचि के कामों में लगाने की जरूरत है। गलतियों की परवाह किए बिना नए नए प्रयोग करने और मिल बैठकर ज्ञान साझा करने से ही नई युक्तियां सूझती हैं। हमारे दिमाग की ताकत उसकी अरबों कोशिकाओं में नहीं, एक दूसरी के साथ जुड़ने से बने जाल में रहती है। तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद करने की नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम में रचनाशीलता पर जोर देने की जरूरत है। अभ्यास चार और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।